करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्
हम लोग पांचवा अध्याय देख रहे हैं। पांचवा अध्याय अर्जुन के एक प्रश्न से शुरू होता है। अर्जुन का प्रश्न है, कर्मणाम संन्यासम, भगवान आप कर्म संन्यास की भी बात कर रहे हो। पुनर्योगम च संससी, संससी में प्रसन्न, आप प्रशंसा कर रहे हो, तो आप कर्म संन्यास की और कर्म योग की दोनों की प्रशंसा कर रहे हो। ये पिछले अध्याय में हमने देखा है, प्रशंसा की है उन्होंने। यश्रेय एतयो एकम, इन दोनों से में मेरे लिए कौन सा अच्छा ये बताओ। मेरी लाइक डिसलाइक के बारे में आप मत सोचो, मेरे लिए श्रेय जो है, मेरे लिए जो सबसे अच्छा हो वो मेरे को बताओ। तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, ठीक करके सुनिश्चित करके बताओ कि भाई आपके लिए ये ठीक है। भगवान कहते हैं, संन्यास है कर्म योगश्च निश्रेयस्कर निश्र करो उभौ। संन्यास, संन्यास मतलब कर्म संन्यास, कर्म संन्यास मतलब ये याद रखना होगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। संन्यास का मतलब यहां दूसरा कुछ नहीं है। तो संन्यास है कर्म योगश्च, भगवान कहते हैं कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों में ही निःश्रेय मिलता है। निःश्रेय मतलब नितराम श्रेय, नितराम श्रेय मतलब मुक्ति मिलती है। तो कर्मयोग का फल मुक्ति, कर्म संन्यास का फल, कर्म संन्यास कर्मयोग काम करना है। अच्छा, तयोस्तु कर्म संन्यास कर्मयोगो विशिष्टते, भगवान कहते हैं मगर इन दोनों में मैं कहूंगा कर्म संन्यास से कर्म योग बेहतर है। कर्म संन्यास से कर्म योग बेहतर है। अच्छा, भगवान कहते हैं देखो संन्यासी किसको कहते हैं, गेयम स नित्य संन्यासी यो च न द्वेष्टि न कांक्षति, उसको संन्यासी समझो जो न तो द्वेष करता है और न आकांक्षा करता है। तो आकांक्षा मतलब चाहना, चाहना का मतलब लाइक्स राग, द्वेष का मतलब डिसलाइक्स। जो जिसमें लाइक्स डिसलाइक्स नहीं है, जिसमें राग द्वेष नहीं है, उसको भगवान क्या कहते हैं, गेयच नित्य सन्यासी, वो सन्यासी है। तो केवल कपड़े पहनने से सन्यासी नहीं होता। तो सन्यासी कौन है, सन्यासी वो है जिसमें लाइक्स एंड डिसलाइक्स कम हो गई। जिसमें लाइक्स डिसलाइक्स कम हो गई, निर्द्वंद हो गया। निर्द्वंद मतलब लाइक्स एंड डिसलाइक्स के हिसाब से सुख और दुख आता है। आप जिस चीज को चाहते हो, जो आप पसंद करते हो वो मिल जाएगी तो आपको सुख मिलेगा, और जो चीज आपको पसंद नहीं है, जिससे आप द्वेष करते हो, वो अगर मिल जाए तो दुख होगा, नहीं मिले तो सुख होगा। तो भगवान कहते हैं निर्द्वंद ही महाबहो सुखम बंधात प्रमुच्यते, बोले कर्म योग करने से क्या होता है, सुखम अनायास वेरी सिंपल वे से बंधन से मुक्ति हो जाती है, बंधात प्रमुच्यते। फिर भगवान कहते हैं सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता, बाला जिनको अभी ज्ञान नहीं है पूरा, बोलो क्या कहते हैं कि कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों अलग अलग हैं। बाला मतलब अज्ञानी, जिनको ज्ञान नहीं है पूरा। बाला की एक डिफिनेशन हमने दी थी जब बाल विहार का सेमिनार हुआ था, उसमें यह बताया गया है 16 साल के वर्ष तक वयस वाले लोगों को हम बाला कहते हैं। तो उनकी अभी बुद्धि परिपक्व नहीं हुई है, बाला है। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती पंडिता। सांख्य मतलब, यहां सांख्य का मतलब उपनिषद का ज्ञान नहीं है, यहां सांख्य मतलब कर्म संन्यास, और योगो कर्मयोग। तो कर्म संन्यास कर्म योग प्रवदंती पृथक बाला, जो बालक हैं वो कहते हैं अलग अलग न पंडिता। पंडित लोग तो कहते हैं अलग नहीं है, न पंडिता। पंडित कौन है? जिसको आत्मज्ञान है उसको हम पंडित कहते हैं। एकम अपि आस्थित सम्यक उभयो बिंदते फलम। आप एक करो, दो में से एक कर लो, मगर आपको दोनों का फल मिल जाएगा। चाहे आप कर्म संन्यास करो चाहे कर्म योग करो, दो में से भगवान कहते हैं एक कर लो तो आपको दोनों का फल मिल जाएगा। दोनों का फल क्या है? दोनों का फल ही मुक्ति है। चाहे आप कर्मयोग मार्ग से जाओ चाहे आप कर्म संन्यास मार्ग से जाओ, दोनों एक ही जगह मिलेंगे। यत सांख्य प्राप्यते, यत सांख्य प्राप्यते कर्म संन्यास से। सांख्य मतलब यहां कर्म संन्यास से जो स्थान आपको मिलेगा, आप प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते। कर्म संन्यास से मुक्ति मिलेगी, कर्म योग से मुक्ति मिलेगी। तो कहते हैं तो दोनों तो एक ही आपको मिलने वाला है, दोनों आपको एक मिलेगा, चाहे आप कर्म संन्यास से जाओ चाहे कर्म योग से जाओ। एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति च पश्यति। जिसको ये समझ में आता है कि कर्म संन्यास और कर्म योग एक है, वो ठीक देख रहा है। जो ये देखता है कि कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों एक ही जगह ले जाते हैं, वो ठीक समझ रहा है। किसको कर्मयोग करना है, किसको कर्म या कर्म संन्यास करना है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। हमने बताया भी था आपको किसको किसको कर्मयोग करना है, किसको कर्म संन्यास करना है। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगता। अयोगता मतलब जिसने कर्म योग नहीं किया उसको हम क्या कहेंगे? अयोगी। ऐसा व्यक्ति अगर कर्म संन्यास ले ले, कर्म संन्यास मतलब कर्मयोग नहीं किया है, भगवान कहते हैं क्या मिलेगा उसको? दुखम आप तुम, दुख मिलेगा। क्यों दुख मिलेगा? मनसो दुआने ही विल नॉट बी सक्सेसफुल, काम बनेगा नहीं आपका। अयोग युक्त है मुनि ब्रह्म न चिरेन अधिगच्छति। और योग युक्त जो है, योग युक्त मतलब जो कर्म योग कर रहा है, जो कर्म योग कर रहा है उसको फल मिलने में कोई देरी नहीं है। चिर मतलब देरी, न चिर मतलब कोई देरी नहीं है, उसको जल्दी प्राप्त हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? कर्म संन्यास करना चाहिए, कर्म योग करना चाहिए। गुड। अच्छा, फिर भगवान कहते हैं योग युक्त विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा जितेंद्रिय सर्वभूत आत्म भूत आत्मा कुर्वन अपि नृप्यते। योग युक्त, योग युक्त जिसने कर्म योग किया है, कर्म योग करके उसने अपनी विशुद्ध आत्मा, कर्म योग करने से क्या होता है? आत्मा विशुद्ध होती है। आत्मा विशुद्ध होती है मतलब मन, देखो यहां आत्मा का मतलब मन हुआ। अच्छा, विजित आत्मा, विजित आत्मा यहां देखो आत्मा का मतलब क्या है, यहां विजित आत्मा का मतलब हो गया विजित देह, जिसने अपनी देह को जीत लिया। फिर एक वर्ड आता है जितेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया। मतलब क्या हुआ? जिसने अपने मन को शुद्ध कर लिया है, जिसने अपने देह को कंट्रोल में किया है, जिसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में किया है। सर्वभूतात्मा और सर्वभूतों में एक ही आत्मा को देखता है। सर्वभूतों मतलब ब्रह्मा से लेकर पिपीलिका तक जितने भी बीइंग्स हैं, उन सब के अंदर एक आत्मा को देखना। कुर्वन अपि न लिप्यते, ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी कर्म बंधन में
लिप्त नहीं होता।
तो आप लोग को एक होमवर्क दिया था हमने, केवल एक ने हमको बताया कि हमने कर लिया है, अशोक जी ने। आप लोगों ने किया? वेरी गुड। चलो थोड़ा सा उसको देख लें। आप मिलाते जाइए अपना, ताकि समय कम लगे। तो देखो, आप दो कॉलम बना लो, एक कर्मयोग और एक कर्म संन्यास। ऐसे कर लो, कर्मयोग कर्म संन्यास।
इनको बता दे कौन सा फिफ्थ चैप्टर
में हम अभी आर कवर्ड सेवन वर्स सेवन। नाउ वी कम टू एट। तो कर्मयोग एवं कर्म संन्यास की तुलना कर लें, तो ये दो कॉलम बना लीजिए, एक कर्मयोग का, दूसरा कर्म संन्यास का। अच्छा, पहला पॉइंट है दोनों का फल मुक्ति है, ये जानना बहुत जरूरी है। दोनों का फल मुक्ति है। नंबर टू, कर्मयोग सरल है और कर्म संन्यास बिना कर्मयोग के कठिन है। देखो, समझ में आया? कर्मयोग सरल है। क्यों सरल है? कर्म तो आप जो कर रहे हो वही करना है, दूसरा नया कर्म नहीं करना है। केवल एटीट्यूड बिहाइंड एक्शन को हमको बदली करना है। अभी हम अपने अहंकार की पूजा करते हैं, उसी कर्म से हमको भगवान की पूजा करनी है, बस इतना ही करना है। तो कर्म योग करना सरल है और कर्म संन्यास कर्म योग के बिना करना कठिन है, क्योंकि कर्म योग के बाद में कर्म संन्यास आएगा। नंबर थ्री, हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए कौन सा मार्ग है कर्म योग की कर्म संन्यास? तो वैराग्य का लेवल अपना चेक करो। वैराग्य अगर 40% है तो आपको कर्म योग करना है। वैराग्य अगर 60% पहुंच गया है, वैराग्य मतलब क्या? विराग। विराग मतलब क्या? दुनिया में अब हमारा राग नहीं है, उसी को वैराग्य कहते हैं। तो अगर 60% वैराग्य आपका आ गया है दुनिया से, तो आप कर्म संन्यास में जा सकते हो। अच्छा, जो कर्मयोगी है वो कैसे अपने राग देश को कम करता है? ईश्वर अर्पण बुद्धि, प्रसाद बुद्धि। जो कर्म संन्यासी है वो कैसे अपने राग देश को कम करता है?
विचार
से। दोनों ही राग देश को कम कर रहे हैं, मगर दोनों के तरीके अलग अलग हैं। कर्मयोगी का तरीका है कि हम अपने सारे कर्म भगवान की खुशी के लिए करेंगे, भगवान के लिए नहीं। भगवान के लिए अगर हम कह देंगे तो आप सब पाप कर्म भगवान को दे दोगे। अब भगवान अभी बताने वाले आ गए कि मैं किसी का पाप नहीं लेता, अभी बताएंगे वो। भगवान की खुशी के लिए। तो कर्म योग के अंदर राग द्वेष कम होता जाता है, और जब कर्म संन्यास में हम पहुंचते हैं तब भी थोड़ा राग द्वेष रहता है, ज्ञान के प्राप्त में वो और कम हो जाता है, मगर 0 पॉइंट तक नहीं पहुंचता है। आप समझ रहे हैं? न दृष्टि न कांक्षति का मतलब हुआ जिसमें द्वेष नहीं है, जिसमें आकांक्षा नहीं है, जिसमें राग नहीं है, द्वेष नहीं है, लाइक्स नहीं है, डिसलाइक्स नहीं है। कर्मयोगी के अंदर वो आस्ते आस्ते कर्मयोग करते करते कम होते हैं, फिर वो कर्म संन्यास में जाता है, श्रवण मनन निधि ध्यासन करता है, वहां करते करते फिर वो और कमती होते जाते हैं, मगर 0% पर नहीं पहुंचेंगे। ज्ञान होने के बाद भी राग द्वेष पूज्य गुरुदेव को भी, ज्ञान होने के पश्चात भी साउथ इंडियन कॉफी अच्छी लगती थी, ज्ञान के प्राप्त के बाद भी लिखने की उनकी वासना चलती रही। ज्ञान के पहले जर्नलिस्ट थे, ज्ञान के बाद आध्यात्मिक पुस्तकें लिखनी शुरू कर दी। देखो लाइकिंग डिसलाइकिंग जो है रह जाती, यही मेरा कहने का मतलब है। अच्छा, दोनों में जो है सिद्धि असिद्धि में सम रहते हैं, कर्मयोगी भी सिद्धि असिद्धि में सम, मतलब प्रसाद बुद्धि, क्योंकि कर्मयोगी प्रसाद बुद्धि लेता है, भगवान ने जो दिया है वो ये प्रसाद है, और जो कर्मयोगी नहीं है वो क्या करते हैं, वो दुखी हो जाते हैं। क्लासिक एग्जाम्पल है कि एक लड़के ना परीक्षा दी, वो सोच रहा था कि मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट होऊंगा, वो फर्स्ट क्लास सेकंड हुआ, वो रोने लगा। प्रसाद बुद्धि नहीं है, हमको जो चाहा था वो नहीं मिला, वो रो रहा है। तो कर्मयोगी के अंदर भी जो है सिद्धि असिद्धि, मिली नहीं मिली हमें क्या फर्क पड़ता है, हमने उसके लिए काम किया है। जब आप कंपनी में काम करते हो आपको कोई फर्क पड़ता है उनको प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? हमें जो काम दिया था हमने कर दिया, हमारे माथे पर तो ये नहीं है कि आपको हमारी कंपनी का इतना मिलियन हुआ कि नहीं हुआ, वो मेरा हेडेक नहीं है, हम खुश है। अच्छा, कर्मयोगी ज्यादा समय, नेक्स्ट पॉइंट, कर्मयोगी ज्यादा समय कर्म में करता है और कर्म सन्यासी ज्यादा समय विचार में देता है, ज्यादा समय विचार में देता है। कर्मयोगी प्रवृत्ति मार्गी है, कर्म सन्यासी निवृत्ति मार्गी है। कर्मयोग के बाद में ज्ञान सहज, कर्मयोग के कॉलम में लिख लीजिए आप, कर्मयोग के बाद में ज्ञान सहज है, कर्मयोग के बाद में ज्ञान सहज है। और कर्म संन्यास में निष्ठा पाना थोड़ा डिफिकल्ट है, ज्ञान पाना एक चीज है और ज्ञान में निष्ठा पाना एक दूसरी चीज है। नॉलेज एंड अबाइडिंग इन नॉलेज, अच्छा, दोनों में लक्ष्य तक पहुंचने के लिए डेडिकेशन चाहिए और एफर्ट चाहिए। जब तक हमको लक्ष्य ना मिल जाए तब तक हमको एफर्ट करते रहना होगा। आप ये नहीं कह सकते हो कि हमने 3 साल से कर्मयोग किया कुछ नहीं हुआ इसलिए छोड़ दिया, आपको डेडिकेटेड रहना होगा और एफर्ट देना होगा। कर्म संन्यास में भी आपको डेडिकेटेड एंड एफर्ट देना होगा, हमने 3 साल से श्रवण किया कुछ नहीं हो रहा है इसलिए हमने पढ़ना लिखना छोड़ दिया। जो दोनों में साधना करता रहेगा वो सफल निश्चित होगा, गारंटेड। कैसे गारंटेड है सफलता? क्योंकि वो आपके पास में है, सफलता 100% है, मगर आपको करते रहना होगा। कर्मयोग का अधिकारी अगर कर्म संन्यास मार्ग को ले ले तो सफलता में देरी होगी। कर्मयोग का अधिकारी कौन है? जिसका वैराग्य कम है। अगर वो कहने नहीं ये अच्छा है कर्म संन्यास, हम कर्म संन्यास ले लेते हैं, कर्मयोग नहीं करते हैं, तो उसको सफलता में कर्म संन्यास का अधिकारी अगर कर्म योग ले ले तो उसको भी देरी होगी, कर्मयोग तो उसको करना नहीं है मगर शुरू कर दिया उसने। आया समझ में आपको? कर्मयोग का अधिकारी अगर कर्म संन्यास के मार्ग को पकड़ लेता है तो सफलता में देरी होगी। आपका मन शुद्ध हुआ नहीं है, ज्ञान कैसे मिलेगा? और जो कर्म संन्यास का अधिकारी है, कर्म संन्यास का अधिकारी मतलब श्रवण मनन निधि ध्यासन का जो अधिकारी है, वो अगर कर्मयोग से शुरू कर दे तो उसको भी सफलता देरी से मिलेगी। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है आपके डाउनटाउन का महात्मा गांधी रोड और जिन्ना रोड। जिसको जिन्ना रोड से स्टार्ट करना था वो अगर महात्मा गांधी रोड से अगर स्टार्ट करेगा तो उसको मुक्ति पाने में जल्दी होगी कि देरी होगी? समझ में आ रहा ना? उसी तरह कर्मयोगी का जो है, जिसको महात्मा गांधी रोड से स्टार्ट करना था वो जाके जिन्ना रोड से स्टार्ट कर रहा है जर्नी, सफलता मिलेगी उसको? नहीं मिलेगी। अच्छा, तो पंडित जो है दोनों मार्गों को एक मानता है, कर्मयोग के बाद में कर्म संन्यास, क्योंकि दोनों का फल मुक्ति है, इसलिए मार्ग एक ही है, मगर अज्ञानी उसको अलग अलग मार्ग समझते हैं। अच्छा, क्या कर्मयोगी को कर्म संन्यास लेना है? एक प्रश्न आएगा आपके मन में जब आप कहते हो कि कर्मयोग कर्म संन्यास के दोनों के फल एक हैं, मुक्ति है, तो क्या कर्मयोगी को कर्म संन्यास लेना पड़ेगा? देखो, कर्मयोग से आपने मन को शुद्ध किया, आपके राग और द्वेष से कम हुए, आपका वैराग्य लेवल थोड़ा सा बढ़ा, आप अब जो है कर्म संन्यास के अधिकारी हो, ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान प्राप्त करने के बाद में उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है ज्ञान निष्ठा, अबाइडिंग इन दैट नॉलेज, मुक्ति, ऑप्शन नंबर वन। कर्मयोग करो, ठीक समय पर कर्म संन्यास करो, ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान निष्ठा लो, मुक्त, ऑप्शन नंबर टू। कर्मयोग करते रहो। कॉस्मोस का एक रूल है, कॉस्मोस का रूल क्या है कि वो आपके पास में गुरु भेजेंगे, ये कॉस्मोस का रूल है, ये हमारे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है। आप जब तैयार हो जाओगे तो आपके लाइफ के अंदर में कोई गुरु आ जाएगा। आप कैसे कहते हो? मैं नहीं कहता, भगवान कहते हैं। भगवान 10वें अध्याय में कहते हैं कि जो मेरी भक्ति करता है ददामि बुद्धि योगम, उनको मैं बुद्धि योग देता हूँ, उनको ज्ञान मिल जाए उसकी मैं व्यवस्था करता हूँ। तो ज्ञान मिल जाए व्यवस्था, क्या भगवान व्यवस्था करते हैं? बोले मैं उसके पास में खबर भेज देता हूँ कि चिन्मय मिशन कहाँ है। कहाँ आपको ये ज्ञान मिलेगा? कोई आके बता देता है यहाँ जाओ, ये ज्ञान यहाँ मिलता है। और क्लासिक एग्जाम्पल आपको हमने बहुत बार बताया है कि रामकृष्ण के लिए तोतापुरी कहाँ से आए? नॉर्थ इंडिया से। कितने साल पहले? प्राय 150 साल पहले, तब रेल भी नहीं थी। भगवान ने उसको भेजा वहाँ से कलकत्ता कि वहाँ पर एक जो है शिष्य तैयार है, उसको जाके ज्ञान दो, ये भगवान का काम है। इसीलिए हमने कहा ये कॉस्मोस का रूल है। और बहुत रेयर केस में भगवान भीतर से ज्ञान दे देते हैं। तो आप याद रखना, ज्ञान कभी टच करने से नहीं होगा। गुरुदेव को बहुत लोग कहते थे कि ठाकुर रामकृष्ण ने विवेकानंद को छू दिया, ही बिकेम विवेकानंद। उसका नाम नरेंद्र था, पहले का नाम ठाकुर रामकृष्ण ने नरेंद्र को छू दिया, ही बिकेम विवेकानंद, आप हमको छू दीजिए। तो कहते तुम पहले नरेंद्र जैसे अधिकारी बनो, अदरवाइज हम तो तुम्हारा छुएंगे तो मेरे हम
हाथ गंदा हो जाएगा,
मेरा हाथ में तेल लग जाएगा तुम्हारे सिर का, हाथ गंदा हो जाएगा। अच्छा, तो महत्वपूर्ण इसके अंदर बात क्या है कि हमको अपनी साधना जारी रखनी है। भगवान की व्यवस्था है, उसके अनुसार आप कम अपना कर्म करते जाइए। अब भगवान आठवें और नौवें श्लोक में कहते हैं कि कर्म करते हुए भी कोई आदमी जो है कर्म नहीं कर रहा है, क्या है वो? श्लोक नंबर 8 और 9 एक साथ पढ़ेंगे।
नैव किंचित करोमीति,
नैव किंचित करोमीति,
युक्तो मन्नेत तत्त्ववित,
युक्तो मन्नेत तत्त्ववित,
पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन्,
पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन्,
अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्,
अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्,
प्रलपन् विसृजन् गृह्णन्,
प्रलपन् विसृजन् गृह्णन्,
उन्मीषन् निमिषन्नपि,
उन्मीषन् निमिषन्नपि,
इन्द्रियानिन्द्रियार्थेषु,
इन्द्रियानिन्द्रियार्थेषु,
वर्तन्त इति धारयन्,
वर्तन्त इति धारयन्,
नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन्, अस्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्, प्रलपन् विसृजन् गृह्णन्, उन्मीषन् निमिषन्नपि, इन्द्रियानिन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्।
नैव किञ्चित् करोमि इति युक्त मन्यते तत्त्ववित्। युक्तः, युक्तः कौन है? वो जो ज्ञानी है, जो समाहित है, जिसने ट्रुथ को जान लिया, जिसने ब्रह्मन को जान लिया, जिसने अपनी आत्मा के स्वभाव को जान लिया, वो युक्त है, वो तत्त्ववित है, तत्व को जान लिया उसने। अच्छा, ये ज्ञानी कैसा है? जो कर्म अकर्म विकर्म का तत्व जानता है। कर्म विकर्म अकर्म का तत्व क्या है? उसका तत्व है अकर्ता भाव, मैं करता नहीं हूं, मैं करता नहीं हूं। वो और क्या है? वो सम्यक दर्शी भी है। नंबर 2, सम्यक दर्शी। कैसे वो सम्यक दर्शी है? ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मनाहुतम ब्रह्म एवतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। उसको सब जगह ब्रह्म का दर्शन हो रहा है, वो ऐसा ज्ञानी है। अच्छा, वो अकर्तित्व आत्मा को जानता है। कौन सी आत्मा? जो अकर्ता है। आत्मा में कर्तित्व नहीं है। अच्छा है, इतना जानने के बाद भी वो जो कर्म करता है उससे वो बनता नहीं है। बनता नहीं मतलब वो खुद कर्म नहीं कर रहा है। वो क्यों खुद कर्म नहीं कर रहा है? क्योंकि वो अपने आप को अकर्ता आत्मा मानता है। ज्ञान के बाद में हम कौन है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्म कैसा है? करता है, ब्रह्म करता है। अच्छा, हम एक क्षण बिना कर्म के नहीं रह सकते, फिर भी ज्ञानी कर्म करते हुए भी अकर्ता है, बनता नहीं है। देखो, ज्ञान के बाद भी शरीर कर्म करता रहेगा, ऐसा नहीं होता है ज्ञान के बाद में शरीर तुरंत आदमी मर जाएगा, शरीर छूट जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा हो तो फिर क्या होगा? गुरु परंपरा नष्ट हो जाएगी। अगर ज्ञान के पश्चात शरीर छूट जाए तुरंत, क्या होगा? फिर शास्त्र पढ़ाने वाला कहाँ मिलेगा? जिसने तत्व का अनुभव कर लिया है वो वैसा व्यक्ति मिलेगा कहाँ? अच्छा वो बताते हैं, देखो ज्ञानी क्या क्या करता है। पश्यन, पश्यन मतलब देखता है, आफ्टर ज्ञान की बात हो रही है। पश्यन, श्रृण्वन, श्रृण्वन सुनता भी है, स्पृशन छूता भी है, जिग्रण सुनता भी है, असनन खाता भी है। देखो ये पांच में पांच ज्ञानेंद्रिय आ गई, ख्याल करते जाओ। पांच ज्ञानेंद्रिया कौन कौन सी है? देखता है, सुनता है, स्पर्श करता है, सूंघता है, हो गया। देखो उसके बाद में गच्छन जाता है, स्वपन सोता है, अच्छा श्वसन सांस लेता है, अच्छा प्रलपन, प्रलपन बोलता है, प्रलपन बोलता है, विसर्जन त्याग करता है, कृन्नन ग्रहण करता है, उन्मिशन आँख खोलता है, निमिशन आँख बंद करता है, इतने काम करता है। खुद करे या अपने आप होते रहते हैं कुछ काम, श्वास हम खुद नहीं लेते हैं, ये मालूम आपको? नहीं तो रात को सोने से सांस बंद हो जाती है, ऐसा नहीं होता है, सांस अपने आप चलते रहते हैं। तो देखो गच्छन के अंदर कर्मेंद्रिया आ गई, सोना जो है स्वपन के अंदर मन आ गया, श्वसन के अंदर प्राण आ गए, प्रलपन के अंदर वाक इंद्रिय आ गई, विसर्जन के अंदर त्याग इंद्रिय आ गई, ग्रहणन के अंदर हाथ आ गया, उन्मिशन और निमिशन ये उप प्राण है, और भी उप प्राण होते हैं, जमाई लेना, छींकना, वॉमिट करना, ये सब उप प्राण है। तो जितने भी ये फंक्शन हो रहे हैं ज्ञानी, ये फंक्शन हो रहे हैं, काम हो रहे हैं, वो ज्ञानी क्या जानता है? वो कहता है इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। इंद्रियाणि इंद्रियार्थ, इंद्रियाणि मतलब जितनी इंद्रियां बताई आपको, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, मन बुद्धि, ये सब क्या कर रही हैं? ये अपने विषयों के साथ में व्यवहार कर रही हैं। तो आंख का विषय क्या है? रूप और रंग। आंख सुन नहीं सकती। कान का विषय क्या है? शब्द है। कान देख नहीं सकता। नाक का विषय सूंघना है, वो खा नहीं सकता। तो सब अपने अपने विषयों के साथ में वर्तन कर रहे हैं। इंद्रियां इंद्रियों के अर्थों के साथ, इंद्रियों के विषय के साथ में वर्तन हो रहा है। मैं घड़ी देख रहा हूं तो इसमें किसके साथ किसका वर्तन हो रहा है? आंख के साथ में इंद्रियों का विषय क्या है? आंख का विषय एक रूप है और इसका एक रंग है, यह वर्तन हो रहा है। क्या आत्मा वर्तन कर रहा है? क्या आत्मा की उपस्थिति में आंख इस घड़ी को देख रही है? वर्तन किस में हो रहा है? वर्तन हो रहा है आंख में और घड़ी में। आपको आगे चैप्टर 3 में हमने बताया था गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण का गुणों से व्यवहार होता है। कौन बताएगा गुण किसको कहते हैं? सत्व रजस तमस, तीन गुण है। सत्व रजस तीन गुण है, ये गुण किस क्या किसको कहते हैं? माया को। माया त्रिगुणात्मिका, त्रिगुण को माया कहते हैं। उस त्रिगुण से पहले क्या आया? अभी तो पढ़ा था केवल उपनिषद में, सबसे पहले आकाश आया, आकाश के बाद वायु, वायु के बाद अग्नि, अग्नि के बाद पानी, पानी के बाद धरती। ये पांच चीजें हैं, इसको पंच महाभूत बोलते हैं। इस पंच महाभूत से एक सूक्ष्म पंच महाभूत है, दूसरा स्थूल पंच महाभूत है। तो सूक्ष्म पंच महाभूतों से कुछ शरीर की इंद्रियां बनी। सात्विक पंच सूक्ष्म पंच महाभूत से ज्ञान इंद्रियां बनी। राजसिक सूक्ष्म पंच महाभूत से प्राण और कर्मेंद्रियां बनी। बचा क्या? तमोगुण। तमोगुण का फिर मिश्रण हुआ, मिश्रण करके अभी जो हमको पंच महाभूत नजर आते हैं वो स्थूल पंच महाभूत हैं। अभी जो पानी हमको नजर आता है, आकाश नजर आता है, धरती नजर आती है, अग्नि नजर आती है, वो स्थूल है। इसका एक सूक्ष्म रूप होता है जो दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए उसको सूक्ष्म कहते हैं। तो इस पंच महाभूत से हमारा पिंड बना और ब्रह्मांड बना। जितने 14 लोक हैं वो किससे बने? पंच महाभूत से बने। पंच महाभूत आए कहां से? त्रिगुण से आए। सो त्रिगुण से मेरा शरीर बना, त्रिगुण से आपका शरीर बना, त्रिगुण से सारी। तो वहां भगवान ने कहा कि ये जो व्यापार हो रहा है वो क्या हो रहा है? गुणा गुणेशु वर्तन्ते। तो गुण आए कहां से? माया से। तो कौन व्यवहार कर रहा है? व्यवहार सब माया के अंदर हो रहा है। व्यवहार सब माया के अंदर हो रहा है। और माया को छोड़कर, जिसको हम अनात्मा भी कहते हैं, अनात्मा को छोड़कर एक और क्या चीज है? आत्मा। आत्मा की प्रेजेंस में ये अनात्मा जो गुणात्मिका है, गुणा का गुणों के साथ में वर्तन हो रहा है। जैसे ये पंच महाभूतों का बना शरीर अभी बोल रहा है, ये पंच महाभूतों के शरीर सुन रहे हैं। तो वर्तन किस में हो रहा है? गुणों का गुणों से वर्तन हो रहा है, ये आपको समझ जाए। एक्शन कहां हो रहा है? माया में हो रहा है। आत्मा क्या कुछ करता है? नहीं करता है। आत्मा की उपस्थिति में सब होते हैं, ये चीज समझने की है आपको। देखो, साधक के लिए ये सब आपको याद करना है, मगर जो तत्व ज्ञानी है उसको ये याद नहीं करना है। गुना गुने सुवर्तन थे, उसको तो सहज हो गया उसके लिए। वो तो आत्मा में स्थित है, उसको तो मालूम है कि सारी अनात्मा के अंदर व्यवहार चल रहा है। मैं अनात्मा नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। साधक को याद रखना पड़ता है। साधक बीच बीच में स्लिप करता है, अरे मैं किया, मैंने किया, मैंने किया। तुमने क्या किया? प्रकृति कर रही है सब। अच्छा, फिर कर्मयोगी कैसे बंधन से मुक्त हो? ये तो ज्ञानी की बताई बात ना। ज्ञानी कर्म करता है मगर बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता है? मैं आत्मा हूं, इसलिए वो बनता नहीं है। कर्म कौन कर रहा है? मैं नहीं कर रहा हूं। कौन कर रहा है? प्रकृति में हो रही है, माया में हो रही है, गुना गुने सुवर्तन्ते हो रहा है। कर्मयोगी कैसे उस मुक्त होगा? अब बता दें 10वें श्लोक में।
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि,
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि,
संगं त्यक्त्वा करोति यः,
संगं त्यक्त्वा करोति यः,
लिप्यते न स पापेन,
लिप्यते न स पापेन,
पद्मपत्रमिमाम्भसा,
पद्मपत्रमिमाम्भसा।
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, संगं त्यक्त्वा करोति यः, लिप्यते न स पापेन, पद्मपत्रमिवाम्भसा।
अच्छा, देखो कर्मयोगी कैसे कर्म बंधन से मुक्त होता है। एक श्लोक के अंदर ये पूरा कर्मयोग है। भगवान ने आगे भी कर्मयोग क्या है बताया है, दूसरे अध्याय में बताया, तीसरे अध्याय में भी बताया। यहां फिर संक्षेप में कहते हैं, ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, संगम त्यक्त्वा करोति यः। ये कर्मयोगी क्या कर रहा है? ये कर्मयोगी अपने कर्तव्य कर्म करता है। कर्मयोगी अपने कर्तव्य कर्म करता है। कर्तव्य कर्म क्या क्या है? नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है, प्रायश्चित कर्म है और उपासना है। ये चार चीजें वो करता है। कौन सी दो चीजें नहीं करता है? काम में कर्म नहीं करता है और निषिद्ध कर्म नहीं करता है। तो कर्म योगी को कर्म करने हैं। कौन से कर्म करने? अपनी ड्यूटी। भगवान ने कहीं ये नहीं कहा कि डॉक्टर को इंजीनियर की ड्यूटी करनी है, ऐसा नहीं कहा। भगवान ने सबको बराबर यही कहा कि अपनी अपनी ड्यूटी करो, चाहे आप ब्राह्मण हो, चाहे आप क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, अपनी अपनी आप ड्यूटी करो। अगर हम अपनी ड्यूटी भगवान की खुशी के लिए करेंगे तो वो कर्म हो जाएगा। अगर अपनी ड्यूटी हम अपनी खुशी के लिए करेंगे तो सकाम कर्म हो जाएगा, हम बंध जाएंगे। ठीक है, तो ब्रह्मणि अध्याय का मतलब क्या हुआ? सारे कर्म परमेश्वर को मेंटली ऑफर करता है, मेंटली ऑफर करता है। सारे कर्मों को मेंटली ऑफर करने का मतलब क्या है? अब सवेरे से लेके हम 50 किस्म के काम करते हैं, तो हम एक एक काम को अब बोलते जाएं क्या, भगवान ये अब ले लो, ये ले लो, ये ले लो? नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पर शंकराचार्य जी कहते हैं, जो स्वामी के लिए कर्म करने वाले नौकर की भांति मैं ईश्वर के लिए करता हूं, इस भाव से सब कर्मों को ईश्वर में अर्पण करके यहां तक कि मोक्ष रूप फल की भी आसक्ति छोड़कर कर्म करता है। देखो, समझ में आया? जैसे आप अपने कंपनी के अंदर नौकरी करते हो, वहां पर क्या अपनी खुशी के लिए काम करते हो कि अपने स्वामी की खुशी के लिए काम करते हो? किसके लिए करते हो? स्वामी के लिए, एम्प्लॉयर के लिए करना पड़ता है। हमें जो चीज पसंद नहीं है वो भी करनी पड़ती है, वहां पर उसको खुश करना पड़ता है। ठीक उसी तरह कहते हैं कि एक एक कर्म को अर्पण नहीं करना है, अपने आप को अर्पण कर दो। लो भगवान, मैं आपका नौकर हूं। तो नौकर का, सेवक का क्या काम रह गया? उसका एकमात्र काम यही है कि अपने मालिक को खुश करना। हर भृत्य का, हर सेवक का एक ही काम है, अपने मालिक को खुश करना। तो भगवान भी यही कहते हैं कि ब्रह्मणि अध्याय, कि आप अपने आप को भगवान का नौकर समझ लो। नौकर समझ के अपने सारी कर्तव्य कर्म भगवान की खुशी के लिए वे करते जाओ। संगम त्यक्त्वा, संगम त्यक्त्वा सुख दुख अभिलाषा त्यक्त्वा, सुख और दुख की अभिलाषा नहीं है हमें। भगवान ने आपने ये मेरे को ड्यूटी दी है, मैं करता जा रहा हूं, इससे मेरे को सुख मिलेगा कि दुख लगेगा, डजंट मैटर। मेरी ड्यूटी ये है, आपने मेरे को ये काम दिया है, मेरे को ये ठीक से करना है ताकि भगवान दुखी हो, भगवान खुशी हो, ऐसे हमको काम करना है। अच्छा, इसीलिए हम क्या करते हैं, प्रसाद रूप से लेते हैं ना। कर्मयोग के अंदर में फल कैसे लेते हैं? प्रसाद रूप। सुख आया, प्रसाद रूप। दुख आया, प्रसाद रूप। हमने इतना मांगा था, नहीं मिला, कमती दिया, ठीक है। हम सुख खोज रहे थे, दुख आ गया। सब हम एक्सेप्ट कर देते हैं। लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम इव अंबसा, ऐसा कर्मयोगी लिप्यते न पापेन, कोई पाप, पाप का मतलब यहां पुण्य भी आएगा, लिप्यते न पापेन। देखो, पाप होने से भी आपको भोग भूमि में जाके जन्म लेना है, भोगना पड़ेगा। पाप करने से आपको स्वर्ग तो मिलेगा जरूर। हंसते हो आप? पाप करने से स्वर्ग नहीं मिलने वाला, पाप करने से आपको दुख मिलेगा। और अगर मान लीजिए पुण्य किया, फिर भी जन्म लेना होगा, क्यों? सुख को भोगने के लिए। तो पाप हो या पुण्य हो, दोनों में भोगने के लिए आपको जन्म। पुण्य में करते करते आप स्वर्ग लोग पहुंच जाओगे, पुण्य खत्म होगा तो कितने दिन तक आप जो है ऊपर नीचे करते रहोगे। आपको अगर एक लिफ्ट में दे दें, वो आपके यहाँ पर है ना डाउनटाउन में जो बिल्डिंग ऊपर तक जाते हैं, व्हाट इज दैट बिल्डिंग, सीयर्स टावर, अभी तक दूसरा हो गया ना, तो उसमें आप कितनी बार जाओगे, एक बार देख लोगे ऊपर स्वर्ग देख लिया, आप रोज रोज जाओगे फिर देखने जाते हैं, फिर देखने जाते हैं, नहीं जाओगे आप। तो लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम एवं बसा, जैसे पद्म पत्र, पद्म पत्र मतलब लोटस का जो लीप होता है, कभी आपने देखा है उसके ऊपर एक ड्रॉप ऑफ पानी पड़ा रहता है, वो पानी उसके ऊपर नाचता रहता है हवा के कारण, मगर वो पत्र कभी भी गीला नहीं होता है, गीला नहीं होता है। उसी तरह से आपके कर्म आपको किसी किस्म का प्रभाव नहीं कर पाएंगे, चाहे पाप कर्म हो चाहे पुण्य कर्म हो, क्यों नहीं कर पाएंगे? आपको प्रश्न करते रहना होगा अपने आप को, क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं अकर्ता आत्मा हूं, मैंने नहीं किया, किसने किया? गुना गुणेशु वर्तन्ते, प्रकृति ने किया है, कौन दायी होगा? प्रकृति होगी। मगर किया तो मैंने, मेरे शरीर से हुआ, ज्ञान प्राप्त के बाद भी हुआ, हमने देखा ना ज्ञान के बाद भी शरीर छूट नहीं जाता है, हम कर्म करेंगे, करते करते कभी अच्छे कर्म कभी खराब कर्म दोनों ही होंगे, एक कर्म से एक आदमी को सुख मिलेगा एक आदमी को दुख मिलेगा। ज्ञानी कोई भी काम करता है फिर भी ऐसा नहीं होता कि 100% लोग सपोर्ट करते हैं। गुरुदेव जब प्रवचन देना शुरू किए, ब्राह्मण लोग आ गए लड़ने के लिए, आप अंग्रेजी में उपनिषद नहीं पढ़ा सकते, लो नाराज हो गए वो लोग। तो कर्मयोगी कर्म से प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि कर्म भगवान को अर्पण कर दिए गए, भगवान को जो हमने अर्पण कर दिया उसके बाद में वो भगवान समझे, हम उससे कोई प्रभावित नहीं होते, पाप पुण्य नहीं होता, वासना हमारी कमती होने लगी, हमारा मन शुद्ध होने लगा। तो हम कर्मयोगी कैसे अपने को प्योरीफाई करता है? कर्म करके। कर्म सन्यासी कैसे करता है? याद रखना होगा, शुद्ध किसको करना है? मन में क्या अशुद्धता है? राग और द्वेष, लाइक्स एंड डिसलाइक, जिसको हम वासना कहते हैं। मेरे पास मेरी अपनी आत्मा है, मगर मेरा उसके साथ में कोई साक्षात्कार नहीं होता है। हम आनंद स्वरूप हैं, मगर हम रोज रोते हैं, रोज रोते हैं। कारण क्या है? वासना, राग द्वेष, इंप्रेशंस, माया, प्रकृति, योग माया, त्रिगुण, जो नाम देना दे दो, इसके कारण हमसे नहीं होता है। ये चीज भगवान ने आगे भी हमको बताई है, मैं सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगज्वर। पढ़ा है आपने, सुना? चैप्टर थ्री में 30 प्राण श्लोक है तीसरे का, ये कर्म योग का जो है ये डिफिनीशन है यहां पर। वहां भी एक ही बात कही, मैं सर्वाणी कर्माणी सन्यस्य, जितने भी तुम्हारे कर्म है सर्वाणी। अच्छा, भगवान 99% आपके लिए करेंगे, 1% अपने लिए करेंगे? नो, सर्वाणी कर्माणी 100% मेरे लिए करना होगा। सन्यस्य अध्यात्म चेष्टा, वहां पर भी शंकराचार्य जी ने कहा कि तुम अपने आप को भगवान का सेवक समझो, ऐसा वहां भी कहा, इस तरह से कर्म करो। फिर हमने ये भी देखा है, यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। भगवान ने कहा सारे कर्म यज्ञ के लिए होने चाहिए, यज्ञो वही विष्णु हूँ। यज्ञ का मतलब विष्णु। देखो अगर कोई आपको ना बता दे ना तो आप गीता पढ़ के कुछ नहीं समझोगे। आप यज्ञ का मतलब वो आप सोचोगे कि एक आग जला ले उसमें अर्पण करते जाए। यज्ञो वही विष्णु, यहां यज्ञ का मतलब है विष्णु। कर्म किसके लिए करें? विष्णु के लिए करें। और हम अभी तक आपको क्या बोलते जा रहे हैं? सारे कर्म भगवान के लिए करो। आप विष्णु के लिए करना चाहते हो विष्णु के लिए करो, आप शिव भक्त हो शिव के लिए करो, आपके जो इष्ट देवता हैं उसके लिए करो। वो आपके इष्ट देवता आपके कर्म से प्रसन्न होकर आपके ज्ञान प्राप्ति की व्यवस्था कर देंगे। ददामि बुद्धि योगम। ठाकुर रामकृष्ण किसके भक्त थे?
देवी
काली के। उन्होंने वहां पर भक्ति के मार्ग से उनको भी मदर काली ने ही तो व्यवस्था कर दी। तोतापुरी को वहां से 1200-1500 किलोमीटर से आए यहां तक, उनकी व्यवस्था है। तो आप अपने इष्ट देवता के लिए कर्म करो, करते करते आपका मन शुद्ध हो जाएगा। एक और देख ले।
कायेन मनसा बुद्ध्या,
कायेन मनसा बुद्ध्या,
केवलैरिन्द्रियैरपि,
केवलैरिन्द्रियैरपि,
योगिनः कर्म कुर्वन्ति,
योगिनः कर्म कुर्वन्ति,
संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये,
संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये,
कायेन मनसा बुद्ध्या, केवलैरिन्द्रियैरपि, योगिनः कर्म कुर्वन्ति, संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये।
कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि, योगिनः कर्म कुर्वन्ति, संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। अच्छा देखो कर्म कितने चीजों से हो सकता है। कायेन, प्रथम बॉडी से शरीर से, मनसा मन से भी कर्म होते हैं, मन से भी होते हैं, बुद्धया बुद्धि से भी होते हैं, उसके बाद कहते हैं केवल ही इंद्रिय, इंद्रियों से भी होते हैं, ज्ञान इंद्रियों कर्म इंद्रियों से भी कर्म होते हैं। आंख से हम देखते हैं, कान से सुनते हैं, हाथ से पकड़ते हैं, पांव से चलते हैं। मगर ये केवल ही शब्द जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसका मतलब क्या है हम आगे देखते हैं। योगिन कर्म कुर्वंती, योगी ने मतलब कर्मयोगी, कर्मयोगी कर्म कर रहा है। अच्छा संगम त्यक्त्वा, संगम त्यक्त्वा मतलब जो है फल की आसक्ति के बिना, प्रसाद बुद्धि से हो लेगा ना, संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये क्यों कर रहा है? आत्मशुद्धि, यहां आत्मा का मतलब क्या हुआ?
मन।
देखो आपको समझ में आ रहा है आत्मा के कितने कितने मीनिंग है। एक जगह आत्मा माने शरीर हो जाता है, कभी मन हो जाता है, कहीं पर बुद्धि होगा, कहीं शरीर भी हो जाता है। तो यहां पर आत्मशुद्ध है मतलब अंतःकरण को शुद्धि करना है। केवल ही का मतलब क्या है? केवल ही का यहां पर शंकराचार्य जी कहते हैं तीन चीजें इसमें आनी चाहिए। क्या क्या है? ममत्व वर्जित ही, ममत्व नहीं होना चाहिए। जब हम कर्म करें तो उसमें ममत्व ना हो। अच्छा ईश्वराय एव कर्म करोमी, ईश्वर के लिए मैं कर्म कर रहा हूं। तीसरा न मम फलायति, फल मेरे लिए ना हो। फल किसके लिए हो? भगवान के लिए। भगवान जो देना होगा देंगे। देखो आप कर्म करो या कर्म योग करो, कर्म फल जरूर आएगा। आप समझ रहे हो हम कर्म से क्या बोलना चाहते हैं? आप अगर सकाम कर्म करो या निष्काम कर्म करो, फल दोनों में ही आएगा। बोथ केसेस में आपको फल तो जरूर मिलेगा। और प्रसाद बुद्धि से ले लोगे तो आपका अंतःकरण शुद्ध होता है। तो कर्म आप काया से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से करते हैं। ये केवल शब्द जो है ये चारों के साथ जाएगा, आप ऐसा मत समझ लेना, क्योंकि इंद्रियों के सामने वर्ड केवल आया है इसलिए केवल इंद्रियों के साथ में ये ममत्व या फल अपने लिए या ईश्वर को अर्पण करके कर्म करना है। केवल जो है मनसा के साथ भी जाएगा, केवल जो है मन इंद्रियों के साथ भी जाएगा, केवल जो है बुद्धि के साथ भी जाएगा, केवल कायन के साथ में भी जाएगा। तो केवल जो एडजेक्टिव है ये चारों के साथ में जाएगा। तो किसी भी कर्म में ममत्व बुद्धि नहीं है। कर्म चार चीजों से होगा, कायन, वाचा, मनसा, इंद्रिया। मगर इन चारों किस्म के कर्मों से, जो चारों तरीकों से जो हम कर्म करेंगे उसमें ममत्व बुद्धि नहीं होनी चाहिए। सारे कर्म ईश्वर के लिए होने चाहिए और उसमें हमारे कामना, अपनी काम्य कर्म या अपने फल की इच्छा। हुआ क्लियर? अच्छा, काया से कर्म क्या होगा? काया से कर्म होगा स्नान करना है, गमन जाना है, शरीर से ये कर्म हो सकते हैं। मनसा कर्म क्या है? चिंतन। बुद्धि से क्या है? निश्चयात्मिका बुद्धि, डिसीजन जितने लेते हैं बुद्धि से लेते हैं। इंद्रियों से कर्म क्या है? हर इंद्रियों के कर्म डिफरेंट है। कान का कर्म देखना है, ठीक है, आप प्रेजेंट हो तो हर इंद्रियों का फंक्शन अलग अलग है। तो हर इंद्रियों के फंक्शन, मनस का फंक्शन, वाक का फंक्शन और बुद्धि का फंक्शन, सबके अंदर तीन चीज कॉमन होनी चाहिए कि उसमें ममत्व नहीं होना चाहिए, सारे कर्म लिए होने चाहिए और फल
की कामना नहीं होनी
चाहिए। ये तीन चीज होनी चाहिए। अच्छा, अच्छा अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा वो 12वें श्लोक में आएगा, उसको हम अगले दिन देखेंगे। जैसे भगवान ने बताया अगर आप नहीं करोगे तो भगवान को बताना होगा ना कि क्या मिलेगा आपको फिर। ओ
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।